परम पूज्य संत राम पीठ के नवम महंत श्री रामदास जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए आज के माताओं को में भी मातृशक्ति का स्वरूप निदर्शन हो रहा है, जो संध्या और सावित्री स्वरूप में जगत के पालन का दायित्व निर्वहन करती हैं। संध्या माताएं इसलिए हैं कि दिन और रात्रि को जोड़ने वाली संध्या होती है, वैसे वो पति को पुत्रों से जोड़ती हैं, इसलिए वह संधि रूप में होकर के संध्या हो जाती है। और दोनों का त्राण करती है, पुत्र को जन्म देती है, तो जो सूयते जाता सावित्री, जो उत्पन्न करने वाली शक्ति है वो सावित्री है। तो माताएं संध्या हैं, माताएं सावित्री है, त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा, जन्म नयति उदरे जाता जननी। जो जन को उदर में लेकर के घूमती है और उसको जनार्दन तक बनाने का कार्य माताएं ही करती है, क्योंकि उनमें चरित्र भरना बाल्यकाल से, और जब गर्भ में बालक होता है तो जैसा जैसा आचरण माता का होता है वैसा वैसा संस्कार उन बालकों में आता है। इसलिए माताओं की बहुत बड़ी भूमिका है, माता चरित्र का प्रमाण है। सुपुत्रो सुशीलो मातृ पुण्य न, माता के पुण्य से बालक सुशील होता है, और माता की कृपा हो तो कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि माता से पिता को भी संधि करनी पड़ती है। उस माँ के घर में रहने के लिए पिता, जब तक माँ क्रोधी रहेगी घर में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए ये माताएं परम पूज्य हैं, संध्या स्वरूप है, सावित्री स्वरूप है, पुरुषों में इन्हीं की दिव्य शक्ति है। आज तिथि दशमी है और दशमी तिथि में को दशहरा कहा गया है, तो मार्गशीर्ष मास है। कल एकादशी आ रही है, भगवती गीता जी की जयंती है, जो एक महाभारत से प्रादुर्भूत हुई, और महाभारत में भी हेतुभूत यदि नारी शक्ति न हो तो कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। रामायण है तो उसमें भी बिना नारी के छोड़ नहीं सकता है, महाभारत हुआ तो उसमें माताओं का चरित्र ही है। तो जो नारी है उसी के अधीन यह जगत है, कहने का अभिप्राय यही है। तो उन माताओं को वंदना, वत्स जो नंदा का वत्स है, बालक है, वो यही कह रहा है कि हे माँ, तुम्हारी सेवा में यदि मेरा प्राण जाएगा तो मुझे वही गति प्राप्त होगी जो माता की रक्षा करते हुए वीर बालकों को प्राप्त होती है। यह एक बछड़ा कह रहा है, यह माँ के दूध का प्रताप है। तो माता का जैसा दूध होगा, आहार होगा, जैसी उसकी विचारणा शक्ति होगी, उसी तरह का पुत्र पैदा होगा और राष्ट्र का स्वरूप वैसा ही बन जाएगा। इसलिए जो मातृशक्ति है वो संपूर्णतया राष्ट्र निर्मातृ शक्ति है, वह धारण करती है। वो अभिप्राय यह है कि ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को भी कहीं न कहीं धारण पोषण मिला, वह अंड में मिला, विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी नाभि जन्मा कहलाते हैं, अंडज कहलाते हैं। उनका पवित्र तीर्थ पुष्कर, उस पुष्कर तीर्थ में कहा पुष्करे स्नान दुष्करम, पुष्कर तीर्थ का स्नान दुष्कर है। कहा क्यों भाई, जाड़े में ठंड अधिक, गर्मी में गर्मी अधिक, लू भयानक। और तीर्थों की महिमा कलिकाल में बतलाया कि तीर्थ में जाने वाले लोगों को ये दिखाई देता है कि यहाँ गंदगी है, वो जल्दी दिख जाती है, अच्छाई नहीं दिखती है। तो गंदगी को देख करके ही दूर से प्रणाम करके तीर्थों से लोग भाग जाते हैं। इसलिए तीर्थ अपनी महिमा को बचाए रखते हैं, पापी लोग वहां जाकर के भी स्नान नहीं करते हैं। इसलिए यदि आध्यात्मिक वृत्ति अंदर होगी, जब हमारी वृत्ति तीर्थ में स्वच्छ वृत्ति से हम जाएंगे, तभी हमें वो फल की प्राप्ति होती है। इस हेतु को लेकर के पद्म पुराण सृष्टि खंड में बतलाया, पुष्करे स्नान दुष्करम। पुष्कर में ये सब सारी चीजें दुष्कर हो जाती है। बड़े अच्छे अच्छे लोग तीर्थ की महिमा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देवता में, द्विज में, गुरु में, औषधि में, मंत्र में जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्धि होती है। इसलिए भाव प्रधान ही यह जगत है, भाव प्रधान ही देवता है। अगर देवता भाव को समझते हैं, भावनायस्य सिद्धिर्भवति तादृशि देवे द्विजे तीर्थे मंत्रे च भेषजे, ऐसा है, यादृशि भावनायस्य सिद्धिर्भवति तादृशि। इसलिए भाव अपना पवित्र रखना चाहिए, तब तीर्थ का फल, यदि भाव शुद्ध होता है तब व्यक्ति तीर्थ का फल प्राप्त करता है, ऐसा पुलस्त्य ऋषि पितामह भीष्म से कह रहे हैं। और पुष्कर में तो करोड़ों छोटे छोटे तीर्थ हैं, करोड़ों तीर्थों को पुष्कर में भराया। बोला कि ढाई योजन मतलब 10 कोस मतलब 30 किलोमीटर चौड़ा, और आधा योजन 2 कोस अर्थात 6 किलोमीटर चौड़ा उसका प्रमाण बतलाया है। वहां जाने मात्र से राजसूय और अश्वमेधादि यज्ञों की प्राप्ति होती है। बतलाया पहले कि वहां से सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव होता ही है। ज्येष्ठ मास में पुष्कर स्नान का अधिक महत्व बतलाया, और कार्तिक मास की पूर्णिमा को भी पुष्कर स्नान का महत्व बतलाया। तो कार्तिक में ठंड पड़ेगी और ज्येष्ठ में गर्मी पड़ेगी, और दोनों समय ही वहां जाना और वहां जाकर स्नान करना ये दुष्कर हो जाता है। गर्मी में रेतीली हवाएं चलेगी गर्म, और ठंडी में शीतलहरी चलेगी। तो इसलिए कहा कि वहां जाना बड़ा कठिन है। जाने के बाद फिर वहां की गंदगी, अभी कलयुग में तो घोर तीर्थों में गंदगी हो गई, ये लोगों को दिखाई देती है, लेकिन तीर्थों का जो आंतरिक स्वरूप है वह वैसे ही पड़ा है। बाह्य स्वरूप से तीर्थ गंदगी दिखाई देते हैं, अस्वच्छ दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से वो अपनी महिमा को लिए होते हैं। इसलिए वहां पर तपस्या के लिए आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, गंधर्व, अप्सराओं का प्रतिदिन आगमन होते रहता है। उनको जब समय प्राप्त होता है वहां पहुंच जाते हैं। वहां तपस्या करने वालों में देवता भी हैं। देवता इसलिए तपस्या करते हैं कि पितामह ने वहां तपस्या किया था तो उनको बल मिला, तो हम लोग उत्पन्न हुए अदिति से। और दैत्य भी करते हैं, क्योंकि हमारे पितामह ने यहाँ तपस्या किया इसलिए वो भी तपस्या करते हैं, और ब्रह्मर्षि लोग भी तपस्या करते हैं। इसलिए तीनों का आराध्य पुण्यशाली तीर्थ पुष्कर है, और पितरों के लिए तो वो बड़ा ही संजीवनी बूटी का काम करता है। जैसे किसी के शरीर में भूख लगी हो, ग्लूकोज कम हो गया हो, गिरा पड़ा हो, उठ नहीं सकता हो, उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाए, टनमना जाता है, तुरंत लब्ध चेत हो जाता है, इस तरह की स्थिति पुष्कर में तीर्थादि श्राद्ध का बतलाया गया है। अन्नदान की महिमा बतलाई है कि अन्नदान से तृप्ति होती है। अन्नदान वहां जाकर के करने से अनंत गुणा फल होता है। पैसे हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन अन्न जब देंगे तो माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। अन्न में कलौ अन्नगता प्राणाहा, कलिकाल में जो है अन्न की महिमा बहुत है। महाराज श्री के यहाँ अखंड अन्न का जो है वो वो चलते रहता है। हाँ, अन्नपूर्णा चलते रहता है। और नित्यानंद करी, वरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्राले आचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी, दीक्षाम देह कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। भगवान शिव साक्षात जिस भगवती के पास जा करके और भिक्षा मांगते हो कि मुझे अन्न की भिक्षा दे दो, मतलब मुझे जीवन दान दो, क्योंकि तो अन्न के बिना प्राण नहीं रहेंगे, और यदि प्राण नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, तो हम कैसे आराधना कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी जीवन दान दे सकते हैं, माता उसको समेट सकती है, लेकिन अन्न नहीं रहेगा, वो माता के अधीन ही है। इसलिए अन्न की महिमा बहुत बतलाया, पुष्कर में जा करके अन्न दान के लिए बतलाया है। पुष्कर की एक और विशेषता बतलाई है कि पुष्कर में सभी वर्ण के लोग जाकर के अन्नदान इत्यादि कर सकते हैं, ऐसा तीर्थ है। अन्य तीर्थों में अधिकारी निर्णित है, लेकिन पुष्कर के लिए कोई वो नहीं है। चारे चार वर्ण किसी भी प्रकार का व्यक्ति जाए, वहाँ अन्नदान इत्यादि करे, स्नान करे, ऐसा विधि वहाँ बतलाया गया है। और वहाँ भगवान मधुसूदन हमेशा वास करते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा को जो तीर्थ यात्रा करता है पुष्कर की, उसको अक्षय फल प्राप्त होता है, ऐसा पुलस्त्य ऋषि का वचन है। और सायंकाल यदि हम नहीं जा सकते, तो सायं प्रातः यदि पुष्कर तीर्थ का यहाँ से स्मरण करें भावना पूर्वक, तो भी फल की प्राप्ति होती है। यह तीर्थों की महिमा है। यदि हम नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ कथा के माध्यम से भी हम कह लें पुष्कर तीर्थ की जय और ब्रह्मदेव की जय। सभी देवताओं में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ बतलाए गए। तब प्रश्न यह होगा कि आप कभी शिव जी को श्रेष्ठ बतलाते हो, आप कभी ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ बतलाते हो, कभी विष्णु को श्रेष्ठ बतलाते हो, ये क्या आप गप्पा मारते रहते हो बैठ करके यहाँ? तो इसका उत्तर यही होगा कि जब जिस नाव पर चढ़ते हैं, यदि उस नाव पर ही रहेंगे तो डूबेंगे नहीं, और यदि उस नाव पर रहते हैं दूसरे नाव वाले की गीत गाएंगे तो वो नाव वाला छोड़ देगा, तो न इधर के होंगे न उधर के होंगे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसलिए जहां रहते हो वहां पूर्ण रूप से रहो, जहां हो वही पर तन मन धन सब कुछ समर्पित करके रहो। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो उत्पत्ति के मूल में ब्रह्मा जी है, यदि जन्म ही नहीं होगा तो क्रिया पालन कहाँ से होगी? तो सबसे प्रधान किसका है? पुष्कर का है, क्योंकि ब्रह्मा जी उत्पत्ति प्रधान देवता है, इसलिए वहाँ उस कर्म में उनकी प्रधानता है। तो तीर्थों में पुष्कर उत्तम है और देवताओं में ब्रह्मा जी उत्तम है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म प्रदान किया है। जैसे एक लेखक के लिए कलम उत्तम है, एक रण क्षेत्र में लड़ने वाले योद्धा के लिए तलवार बंदूक और भाले वर्षी उत्तम है, दोनों के लिए दो चीजें उत्तम है। तो स्थान की प्रधानता होती है, और जो जिस स्थान पे रहता है वहां उस गुणधर्म के अनुसार उसका चिंतन की प्रधानता होती है। इसलिए ब्रह्मा जी की उत्तमता का प्रतिपादन किया है, क्योंकि जब तक शास्त्र का आप मर्म नहीं समझेंगे तब तक आपको लगेगा कि लोगों ने गप्पा मार दिया है, ऐसा कभी होता होगा? राणा प्रताप के म्यूजियम में जाके तलवार देखने वाले आज भी कहते हैं कि ये झूठी बातें हैं। अरे भाई, कितनी दिन की बातें हुई, अभी आपसे तलवार वो उठेगी नहीं। लेकिन क्या होता है, कालानुक्रम से लोगों की शक्ति छीण होती है, इसलिए लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन शास्त्रों में जिसकी विश्वास पूर्वक बुद्धि होगी वही उस फल को प्राप्त कर सकता है। भावना ही तो है, पत्थर में अच्छी भावना करने वाले को फल मिलने लगता है, और पत्थर पर जो है कसाई लोग कुछ और काटते रहते हैं, वो उसी तरह की गति उनकी होती है। भगवान उसने सूरदास जी ने कहा, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी कपरो, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन कर तखरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, एक नदिया एक नार कहावे, मैलो नीर भरो, जब मिली दो एक बरन भये, तब सुरसरी नाम पड़ो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। जो जल नदी का है वही जल गंगा का भी है, जो सामान्य नदी का जल है वही गंगा का भी है, लेकिन अंतर क्या है कि गंगा वह भावना है जहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं द्रवीभूत होकर के बह चले, लेकिन जो सामान्य जल है वहाँ भाव नहीं है, इसलिए जो भाव प्रधान व्यक्ति होता है वह फल की प्राप्ति करता है, जिसमें भाव नहीं होती है ऐसे ही क्रिया होती है, वो क्रियावान व्यक्ति फल को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके फल की अन्यथा सिद्धि होती है, क्रिया तो करेगा लेकिन अनमनस्क करेगा, इसलिए भाव पूर्वक जो क्रिया होती है वह फल प्राप्ति होती है। भाव पूर्वक क्रिया का नाम श्रद्धा है, और जब श्रद्धा होगी विश्वास होगा तो फल की प्राप्ति होगी, देव तत्व वहां दिखने लगता है। इसलिए तीर्थ में जाने से पहले तीर्थ की महिमा को पढ़ ले, तीर्थ में कौन सा व्यक्ति फल प्राप्त करता है यह समझ ले, यह जरूरी है, क्योंकि ज्ञात